भागवतम के तीसरे स्कंद के पांचवें अध्याय का 50वां श्लोक है। यहाँ पर देवता कह रहे हैं, आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि साकार संस्थापक हैं, फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं और अपरिवर्तित रहते हैं। हे प्रभु, आपका ना तो कोई उद्गम है ना ही कोई आपसे श्रेष्ठ है। आपने समस्त जीव रूपी वीर्य द्वारा बहिरंगा शक्ति को गर्भित किया है, फिर भी आप स्वयं अजन्मा हैं। तात्पर्य, आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा से लेकर अन्य सारे जीवों के पिता हैं। ब्रह्मा से ही विभिन्न योनियों में सभी जीव उत्पन्न हुए हैं, फिर भी परम पिता का कोई पिता नहीं है। सभी श्रेणियों का प्रत्येक जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा तक, किसी पिता से उत्पन्न है, किंतु भगवान का कोई पिता नहीं है। जब वे अपनी अहेतु की कृपा से इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे भौतिक जगत के नियमों के अनुसार अपने किसी महान भक्त को अपना पिता स्वीकारते हैं। चूंकि वे ही स्वामी हैं, इस कारण अपने पिता का चुनाव करने के लिए वे सदैव स्वतंत्र होते हैं। उदाहरणार्थ, नरसिंह देव के अवतार में वे खंभे से प्रकट हो गए और भगवान श्री राम के अपने अवतार में उनके चरण कमलों के स्पर्श से पत्थर से अहल्या प्रकट हो गई। वे परमात्मा रूप में प्रत्येक व्यक्ति के संगी भी हैं, किंतु वे अपरिवर्तित रहते हैं। भौतिक जगत में जीव अपना शरीर बदलता रहता है, किंतु भगवान इस जगत में होते हैं तो भी सदा अपरिवर्तित ही रहते हैं, यही उनका विशेषाधिकार है। जैसा कि भगवद गीता 14:3 में पुष्टि हुई है, भगवान बहिरंगा या भौतिक शक्ति को गर्भित करते हैं और इस तरह बाद में विभिन्न कोटियों के रूप में प्रथम देव ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चीटी तक सारे जीव उत्पन्न होते हैं। जीवों की समस्त कोटियां ब्रह्मा तथा बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, किंतु भगवान हरेक के आदि पिता हैं। भगवान के साथ प्रत्येक जीव का संबंध पुत्र पिता के रूप में होता है, समस्तर का नहीं। कभी कभी प्रेम में पुत्र पिता से बढ़कर होता है, किंतु पिता और पुत्र का संबंध श्रेष्ठ तथा अधीनस्थ का होता है। प्रत्येक जीव, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवता क्यों ना हो, परम पिता का नित्य अधीनस्थ सेवक होता है। महत तत्व सिद्धांत प्रकृति के सारे गुणों का जनक स्रोत है। सारे जीव भौतिक प्रकृति माता द्वारा प्रदत्त शरीरों के साथ भौतिक जगत में अपने पूर्व कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं। यह शरीर भौतिक प्रकृति का उपहार है, किंतु आत्मा मूलतः परमेश्वर का अंश होता है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्री उतापदकमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि विदुर जी मैत्रेय ऋषि से मिले। विदुर जी को जब दुर्योधन ने निकाल दिया था राज्यसभा से, तो विदुर जी विचलित नहीं हुए थे कि देखो इतने सुख सुविधा मुझसे छीन ली। उन्होंने इसको भगवान की कृपा समझा और इस अवसर को सहर्ष स्वीकार किया तीर्थ यात्रा करने के लिए। तीर्थ यात्रा करने का अभिप्राय, उद्देश्य, प्रयोजन वहाँ जाकर नदियों में स्नान करना नहीं है, वो भी करना चाहिए, लेकिन तीर्थ यात्राओं का जो मुख्य उद्देश्य है वो है वहाँ पर निवास कर रहे भक्तों का, साधुओं का संग लेना। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, जो साधु संत हैं वही, उन्हीं के कारण तीर्थों का महत्व है। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, तीर्थ स्थान है ही इसलिए क्योंकि वहाँ पर साधु रहते हैं। साधु जो हैं वो तीर्थों को भी पवित्र करने की उनमें क्षमता होती है। जो साधु हैं वो तीर्थ स्थानों में जब नदी में स्नान करते हैं तो पवित्र नहीं होते, पवित्र कर देते हैं। जितने लोग भोगी पापी लोग जाके गंगा जी जमुना जी में स्नान करते हैं और सारे पाप उनको नदी में छोड़ आते हैं, जब साधु महात्मा उसी नदी में स्नान करते हैं तो वो उन पापों से नदियों का उद्धार करते हैं। इतनी शक्ति होती है और वो शक्ति कहाँ से आए? स्वांतस्थेन गदाभृता, क्योंकि उनके हृदय में स्वयं भगवान विराजमान है। और यहाँ पर विदुर जी अपने उदाहरण से शिक्षा दे रहे हैं कि किसी भी तीर्थ स्थान में जाओ, वहाँ पर साधुओं को ढूंढो, संतों को ढूंढो और उनसे शिक्षा लो, उनसे आध्यात्मिक जगत के बारे में, अपने कर्तव्य के बारे में उनसे शिक्षा प्राप्त करो। यही सही चेतना है, मानसिकता है तीर्थ यात्रा में जाने के लिए। लोग वृंदावन भागते हैं, भक्ति में आने के बाद भी लोग भागते हैं वृंदावन की ओर, सुबह जाते हैं फटाफट दर्शन किए और अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाया, प्रसाद खाया और शाम तक वापस आ गए, देखो हम वृंदावन गए थे। अच्छा है आप वृंदावन गए, वृंदावन जाना वृंदावन की सेवा है, पाद सेवनम भगवान के चरण है तीर्थ स्थान। तो अगर हम किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो वो भगवान की चरण सेवा करने के समान है, लेकिन वहाँ जाकर हाथ लगा के फटाफट वापस आ जाना, उससे इतना लाभ प्राप्त नहीं होता। जाना चाहिए धाम, लेकिन भक्तों के संग में जाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ सेवा करें वहाँ पर जाकर और कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें। हाँ, तो ये चेतना होनी चाहिए तीर्थ स्थान में, भगवान के धाम में जाने के लिए। सो विदुर जी जब तीर्थ यात्रा कर रहे थे तो हरिद्वार में वे मैत्रेय ऋषि से मिले और मैत्रेय ऋषि से उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे और उसमें से एक प्रश्न था कि सृष्टि की रचना कैसे होती है। तो मैत्रेय ऋषि जो हैं इस प्रश्न के उत्तर में ये बता रहे हैं कि कैसे भगवान से महत्त्व की उत्पत्ति हुई और फिर फॉल्स ईगो, झूठे अहंकार के माध्यम से अलग अलग प्रकार के पदार्थ उत्पन्न हुए। 5 स्थूल तत्व जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये उत्पन्न हुए और किस प्रकार से एक के बाद एक जो हैं ये पदार्थ बने और किस प्रकार से इंद्रियां उत्पन्न हुई और किस प्रकार से देवी देवताओं का प्राकट्य हुआ, देवी देवताओं का जन्म हुआ। और यहाँ पर ये भी बताया मैत्रेय ऋषि ने कि ये कोई भी काम अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं हो गया, ये सारे कामों के पीछे भगवान की शक्ति, भगवान की योजना विद्यमान है, भगवान की इच्छा से ही ये सारे कार्य हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि भगवान इतने दक्ष हैं और क्योंकि भगवान के इच्छा मात्र से ही सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं, तो देखने में ऐसा लगता है कि अपने आप चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वास्तव में भगवान की योजना, भगवान का सक्रिय हाथ, सक्रिय योगदान सृष्टि के हरेक कदम कदम में रहता है। और भगवान इसकी पुष्टि भगवद गीता में करते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम, कि मेरी ही देखरेख में ये पूरी भौतिक सृष्टि कार्य कर रही है। ऐसा नहीं है कि अपने आप जो ग्रह हैं हवा में तैर रहे हैं, अपने आप सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज़, हर वस्तु, हर कार्य भगवान की इच्छा से ही संपन्न हो रहा है। सो इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि इस श्लोक की जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि जब देवी देवताओं का जन्म हुआ तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे करना है, हमारा कर्तव्य क्या है। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना शुरू की और उन्होंने अनेक प्रार्थनाएं की और उन्होंने बोला, देवताओं ने ये स्वीकार किया कि हमारा जन्म तो आपकी सेवा के निमित्त ही हुआ है, लेकिन भौतिक प्रकृति से प्रभावित होने के कारण हम भूल जाते हैं कि हमारा जन्म आपकी सेवा के निमित्त है, हम कुछ और काम करना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप ब्रह्मा के भी पिता हैं, तो ब्रह्मा के पिता होने से क्या भगवान में कुछ परिवर्तन आ गया? भगवान में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। इसके लिए देवताओं ने कूटस्थ शब्द का प्रयोग किया कि आप में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया, आप ब्रह्मा के जन्म से पहले जैसे थे, आप अब भी वैसे ही हैं, है ना। और इसकी पुष्टि ईशोपनिषद के मंत्र में हुई है, हाँ, ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम् पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णात् पूर्णम उदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवा वशिष्यते, कि हे भगवान, आप परम पूर्ण हैं और आपसे अनेक परम पूर्ण, अनेक पूर्ण इकाइयां आपसे उत्पन्न होती हैं, अनेक ब्रह्मांड भगवान से प्रकट होते हैं, आध्यात्मिक जगत भगवान से प्रकट है, भौतिक जगत भगवान से प्रकट है। और इसकी पुष्टि भगवान भगवद गीता में भी कर रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभु, हर वस्तु मुझसे प्रकट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भौतिक जगत भगवान से प्रकट है या केवल इस पृथ्वी के जो जीव है वही भगवान से प्रकट है, नहीं, पूरा आध्यात्मिक जगत भगवान से प्रकट है, पूरा भौतिक जगत भगवान से प्रकट है, एक चींटी के शरीर में जो जीव है वो भगवान से प्रकट है, और ब्रह्मा जी तक जो बड़े से बड़े देवी देवता हैं वो भी भगवान से प्रकट है। ये तात्पर्य है अहम सर्वस्य प्रभु। तो भगवान से अनेक पूर्ण इकाइयां प्रकट होती हैं, लेकिन फिर भी भगवान में कुछ भी बदलाव नहीं आता, कूटस्थ भगवान में कुछ बदलाव, भगवान जस के तस बने रहते हैं, परम पूर्ण बने रहते हैं, पूर्णम एवा वशिष्यते, पूर्ण इकाइयां भगवान से निकली लेकिन भगवान फिर भी पूर्ण रहे। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि हरेक जीव का एक पिता है, हम देखते हैं हमारे पिता हैं, हमारे पिता के पिता थे, उनके पिता थे, उनके पिता थे, उनके पिता थे, अनेक पीढ़ियां आप पीछे जा सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं हो तो हरिद्वार या कुरुक्षेत्र में वो पंडे बैठे होते हैं बही खाते लेकर, है ना, वो आपकी कई पीढ़ियों का ब्यौरा दे देते हैं। अगर उनके पास में जाकर कभी आपके पूर्वजों ने लिखवाया हो तो कई 10-20-30 पीढ़ियां आपके पीछे की बता सकते हैं वो। तो हर व्यक्ति का पिता है। तो हम ये सोच सकते हैं कि जब भगवान ब्रह्मा जी के पिता हैं, भगवान हमारे पिता हैं, तो भगवान का भी कोई पिता होगा। तो यहाँ पर जो देवी देवता कह रहे हैं कि आपका कोई पिता नहीं है, और इसकी पुष्टि ब्रह्मा जी स्वयं कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी ये श्लोक बिल्कुल अगर आप देखें तो बिल्कुल ब्रह्म संहिता के श्लोक से मिलता जुलता है। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, कि हे कृष्णा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे कृष्णा आप परम ईश्वर हैं। परम ईश्वर मतलब ईश्वर से आप मतलब स्वामी निकाल सकते हैं। स्वामी का अर्थ है इस सृष्टि का स्वामी, घर का स्वामी, अपनी इंद्रियों का स्वामी। हाँ, तो हर व्यक्ति हर जीव कुछ कुछ चीजों का स्वामी है। जीव जंतु भी कुछ भूभाग पर अपना नियंत्रण रखते हैं। शेर बोलता है कि ये मेरा क्षेत्र है, वहां पे किसी दूसरे शेर को नहीं आने देता शिकार करने के लिए। हम सोचते हैं हमारा घर है, हमारी ये चार दीवारी है, यहाँ पर हमारा पूरा अधिकार है, हमारी मर्जी से काम होगा। हाँ, सो हम भी अपने घर के ईश्वर हैं। हाँ, लेकिन कृष्ण परम ईश्वर हैं। कृष्ण ब्रह्मा जी इत्यादि देवी देवताओं के भी स्वामी हैं, देव देवा। कृष्ण जो हैं वो किसी के अधीन नहीं है, सभी देवी देवता भगवान के अधीन है। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह, और भगवान के विग्रह में कभी कुछ बदलाव नहीं आता, हमेशा भगवान परम पूर्ण बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से कितने पूर्ण निकालो तो भी वो पूर्ण बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय, तो भगवान की पहचान क्या है? क्या ये कहना सही है कि भगवान अजन्मा है, या ये कहना सही है कि भगवान यशोदा नंदन है? दोनों में से क्या कहना उचित होगा? क्या भगवान यशोदा नंदन है, या भगवान की सही पहचान क्या है? हाँ, भगवान अजन्मा है, है ना? तो क्या भगवान यशोदा नंदन नहीं है? तो फिर असली पहचान क्या है भगवान की? सो भगवान की जो असली पहचान है कि अजन्मा कृष्ण जो यशोदा नंदन है। भगवान में सारे विरोधाभासों का समावेश है, उनका सामंजस्य है। भगवान में जितने भी विरोधी गुण हैं सबका पूर्ण रूप से सामंजस्य हो जाता है। तो भगवान अजन्मा भी रह सकते हैं और साथ में यशोदा नंदन भी रह सकते हैं। अगर हम बोलें कि भगवान यशोदा नंदन ही है तो ये पूर्ण परिचय नहीं होगा। अगर हम बोलें कि भगवान अजन्मा है तो वो भी पूर्ण परिचय नहीं है। पूर्ण परिचय है कि अजन्मा कृष्ण यशोदा नंदन है, ये पूर्ण परिचय है। और इससे पता चलता है कि भगवान में सभी विरोधाभास जो है पूरी तरह से बहुत अच्छे ढंग से जो है समंजित है, सामंजस्य स्थापित है। ऐसा नहीं है कि अगर ये हो गया तो वो कैसे होगा, है ना? अगर एक व्यक्ति दिल्ली में है तो बॉम्बे में कैसे होगा? भगवान हर जगह हो सकते हैं। हाँ, अंडांतरस्थ परमाणु चांतरस्थम, भगवान कण कण में विराजमान है, भगवान एक समय में अनेक जगहों पे हो सकते हैं। ये भगवान का योग ऐश्वर्य है, भगवान की योग शक्ति है। भगवान एक समय में 16,108 रानियों के साथ रहते थे। और आप कह सकते हो कि ये तो जादूगरी से हम भी कर सकते हैं, है ना। आप देखो कि अगर आप यहाँ जाओ, दिल्ली में बिरला मंदिर है, तो वहाँ पे एक वो शीशे का वो कमरा बना हुआ है, शीश महल कहते हैं उसको। तो वहाँ पे छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं, तो आप वहाँ जाके खड़े हो जाओ तो चारों तरफ आपका जो है परछाई, आपकी आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा। आप हाथ खड़े करो तो सारे शीशों में आप हाथ खड़े हो जाएंगे। नहीं तो जब हम छोटे छोटे थे तो जाके हम वहाँ पे 10-15 मिनट यही करते रहते थे, कभी हाथ खड़े करते थे, कभी उछलते थे, तो देखते थे शीशे में, सब सब जगह यही हो रहा है। हाँ, लेकिन जब भगवान 16,108 रानियों के साथ अलग अलग महलों में रहते हैं, तो भगवान एक ही कार्य नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि हर एक महल में भगवान सो ही रहे हैं, या हर एक महल में भगवान एक ही समय पर खाना खा रहे हैं और वही सब्जी खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान योगेश्वर हैं, भगवान अलग अलग स्थान पर एक ही समय में अलग अलग कार्य कर सकते हैं, ये भगवान की अचिंत्य योग शक्ति है। सो देवी देवता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान उनके स्रोत हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जब देवी देवताओं का जन्म हुआ तो उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, और आगे के अध्यायों में आप देखेंगे ब्रह्मा जी के जन्म का विवरण है, और ब्रह्मा जी के जन्म के एकदम बाद उनकी क्या स्थिति हुई, कैसे भ्रमित हुए, क्या उनको उन्होंने अपने भ्रम को, अपने मोह को दूर करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, उसका वर्णन आपको मिलेगा। सो जब देवी देवता जन्म लेते हैं तो सेवा लेने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और भगवान उन पर कृपा करके उन्हें सेवा करने की शक्ति और ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन देखा जाता है कि उस जो सेवा जो देवताओं को मिली है, उस सेवा के बल पर वो गर्वित हो जाते हैं। नहीं, अगर इंद्र को कुछ सेवा दिया भगवान ने तो उस सेवा के बल पर वो गर्वित हो जाता है। ब्रह्मा जी गर्वित हो जाते हैं सेवा के बल पर कि देखो मैं पूरी सृष्टि का निर्माण कर रहा हूँ। इंद्र सोचते हैं मैं सभी देवताओं का राजा हूँ, सारे देवता झुककर मुझे प्रणाम करते हैं। तो जब भक्त भी भक्ति में जुड़ते हैं, जब भक्त भक्ति में जुड़ने के बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमें अपनी सेवा में लगाएं, और प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ ही ये बताया कि हे कृष्णा, हे भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, मुझे अपनी सेवा में लगाएं। लेकिन जब भगवान सेवा देते हैं तो कई बार वो सेवा करते करते भक्त के मन में अभिमान आ जाता है, वो ये सोचना शुरू कर देता है देखो मैं कितनी बड़ी सेवा कर रहा हूँ, मैं हजारों लोगों को प्रचार कर रहा हूँ, मैं इतने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवा रहा हूँ, हाँ मैं कितना अच्छा प्रसाद बना रहा हूँ, मैं कितना अच्छा झाड़ू मार रहा हूँ, वो देखो ध्यान से जाओ अभी मैंने सफाई की है। हाँ, तो कुछ भी सेवा मिलेगी तो कई बार भक्तों के मन में अभिमान आ जाता है, और वो जो अभिमान है वो पतन का कारण है। भगवान बहुत ही संकोच करके अपनी सेवा प्रदान करते हैं। क्यों संकोच करते हैं भगवान? क्योंकि उस सेवा के माध्यम से हम भगवान को अपने अधीन कर सकते हैं, हम भगवान को अपने वशीभूत कर सकते हैं, भगवान हमारी इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों के स्वामी होने पर भी महाराज नंद की चरण पादुकाएं अपने सिर पर उठाकर चलते थे। जब नंद महाराज कहते थे कृष्णा मेरी चप्पल लेके आओ, तो छोटे से भगवान कृष्ण भागते थे फटाफट और अपने पिता की चरण पादुकाएं उठा के अपने सिर पर रख के फटाफट भाग के आ जाते थे, ये लीजिए। सो भगवान वशीभूत हो जाते हैं। जो वृंदावन की गोपियां हैं, जो वृद्ध गोपियां हैं, वो भगवान को नचाया करती थी, वो अलग अलग भजन गाती थी और बोलती थी नाचो कृष्णा, और कृष्णा नाचते थे उनको खुश करने के लिए। सो एक खिलौने की तरह, खिलौने की तरह चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हम देखते हैं कि नवदीप की जो भक्त महिलाएं थी वो चैतन्य महाप्रभु के लिए हरे कृष्ण का कीर्तन करती थी और चैतन्य महाप्रभु छोटे निमाई वो उस हरे कृष्ण कीर्तन में नाचा करते थे और जिससे सारी भक्त महिलाएं प्रसन्न होती थी। जब वो स्त्रियों को भगवान का नृत्य देखना होता था तो हरे कृष्ण कीर्तन शुरू कर देती थी और भगवान अपने आप नाचना शुरू कर देते थे, उनका मनोरंजन हो जाता था। तो जो भक्त हैं वो सेवा के माध्यम से भगवान को अपने वशीभूत कर लेते हैं। अर्जुन ने अपनी सेवा के माध्यम से कृष्ण को वशीभूत कर लिया और कृष्ण को अपना सारथी बना लिया। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण को वशीभूत किया और भगवान कृष्ण को उन्होंने अपने दूत के रूप में कई बार उनका प्रयोग किया और भगवान कृष्ण को बुरा नहीं लगता था। तो देखो मुझे संदेशा दे के भेज दिया और 1 करोड़ लोग हैं उनको क्यों नहीं भेज रहे, मुझे ही भेज रहे हैं। भगवान को अच्छा लगता है अपने भक्तों की सेवा करना, तो इसलिए भगवान संकोच करते हैं कि अगर ये सेवा गलत हाथों में पड़ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो अगर भगवान बहुत कृपा करके अगर अपनी सेवा प्रदान करते हैं तो भी उस सेवा के बल पर कभी भी गर्वित महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि और भी विनीत भाव लेना चाहिए कि ये सेवा तो भगवान के पास और असंख्य भक्त हैं जिनके माध्यम से भगवान ये सेवा करवा सकते थे, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि मेरे शुद्धिकरण के लिए मुझे ये सेवा दिया। तो इस चेतना के साथ हमें भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं तो बहुत अच्छे से जप करता हूँ, बहुत अच्छी बात है आप अच्छे से जप करते हैं, वो अच्छे से जप करने की शक्ति भी भगवान से मिली, तो भगवान की कृपा हरेक सेवा में हरेक कार्य में देखनी चाहिए और इससे अपने मन में विनीत भाव विनम्रता का भाव अनुशीलन करना चाहिए। एक और बात जो इस तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान ने अपने राम अवतार में अहल्या का उद्धार किया अपने चरण स्पर्श करके, तो यहाँ पर प्रभुपाद ग्रंथों में और जगह बता रहे हैं कि अहल्या जो है वो गौतम ऋषि की पत्नी है। गौतम ऋषि और अहल्या जो है बहुत ही सुंदर थी और इंद्र जो है उनका इंद्र का मन जो है वो उनका भोग करने के लिए ललचा गया अहल्या का, तो वो गौतम ऋषि का भेष बना कर आया और उन्होंने अहल्या जी के साथ समय व्यतीत किया इंद्र तृप्ति की, क्योंकि अहल्या को आभास हो गया था कि मेरे पति नहीं है। स्त्री हमेशा इस बात का अनुभव कर सकती है कि उसके पति की क्या आदतें हैं, फिर भी अहल्या ने इंद्र को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए क्रोध होकर गौतम ऋषि ने अहल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि नारद मुनि ने कुबेर पुत्रों को नल कुबर और मणि ग्रीव उनको भी पेड़ बनने का श्राप दिया। तो क्या वो श्राप से कुबेर पुत्रों को और अहल्या को हानि हुई कि लाभ हुआ? अगर साधु भगवान के भक्त अगर किसी को श्राप भी दे तो वो भी उनके कल्याण का साधन बन जाता है। अहल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दिया लेकिन साथ में ही उसके कल्याण का भी प्रबंध कर दिया, अन्यथा भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होता? भगवान के चरण कमल जिनकी आशा करोड़ों साधु महात्मा कर रहे हैं और भगवान के दर्शन फिर भी नहीं कर पाते करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद। अहल्या ने अनायास अपने पति के श्राप रूपी कृपा से प्राप्त कर लिया। नल कुबर मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र हैं, नारद जी के श्राप रूपी कृपा वश उन्होंने भगवान के शरीर का स्पर्श प्राप्त किया और भगवान ने स्वयं बंधे होने पर भी उनका उद्धार किया, उन पर कृपा की और अपना दर्शन दिया। तो जिस प्रकार भगवान कभी भी द्वेष से प्रेरित होकर कोई कार्य नहीं करते, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी बिना किसी द्वेष के कार्य करते हैं। अगर भगवान के भक्त कभी क्रोधित भी हों, आप पर गुस्सा भी करें, तो उसको भी उनकी कृपा समझना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए देखो साधु हैं फिर भी गुस्सा कर रहे हैं, साधु को तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर साधु गुस्सा करें आपको डांटें तो उसको भी उनकी कृपा मानकर सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो साधु है मेरे हित की कामना करते हुए मुझे शिक्षा दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं।